أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے 178 سے لے کر کے 182 تک. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا درس سلسلہ وار سورة بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے چل رہا ہے, اور حق تعالی شانہ نے جو یہاں مضمون کو بیان فرمایا ہے, علماء نے ان مسائل کو اور ان چیزوں کو ابواب البر کے نام سے بیان فرمایا ہے. یہ ابواب البر ہیں, نیکی کے بیان, نیکی کے ابواب. کیونکہ گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے بڑا حلہ مچایا تھا, یہودیوں نے بھی, عیسائیوں نے بھی, کافروں نے بھی, سب نے مل کر کے, کہ قبلے کے پیچھے پڑ گئے تھے. بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا, کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا, تو اس کو بڑا میڈیا میں بڑا زور شور چلایا گیا تھا اس زمانے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیز کو لے کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا پہلے. اسلامی ضابطہ بھی ہے یہ, اور عقل مندوں کی نشانی بھی ہے یہ, کہ ایک مرتبہ کسی چیز کا اچھی طریقے سے تسلی بخش جواب دے دے کے کام آگے بڑھ جانا چاہیے, اسی میں الجھ کے نہیں رہنا. تو حق تعالی شانہ نے یہی مضمون بیان فرمایا کعبۃ اللہ کے متعلق, کہ قبلہ اس وجہ سے بنایا گیا ہے کعبۃ اللہ کو کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گزار دعا بھی تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مکے سے تھا, اور آپ بنو اسماعیل سے تھے. بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی. تو اور آخر زمانے میں پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہوگا. تو یہ ساری وجوہات تھی, اس وجہ سے جو ہے قبلہ حضور کو کعبۃ اللہ بنا دیا گیا. یہ جوابات جو ہے دے دیے گئے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نہیں نیکی نہیں ہے کہ بھائی کعبہ یہ قبلہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, اس کے پیچھے مت پڑو, کرنے کے جو کام ہیں آگے وہ بھی کیا کرو. چنانچہ اس کے بعد میں گزشتہ آیت میں مضمون بیان فرمایا تھا کہ نیکیوں میں سے لیکن البر من آمن باللہ, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, اور مال کی چاہت کے باوجود رشتہ داروں کو مال دینا, یتیموں کو مال پہنچانا, مسکینوں کو مال دینا, مسافروں کی مدد کرنا, پوچھنے والے مانگنے والوں کی مدد کرنا, لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں, قیدوں سے آزاد کرانے میں وہاں مال دینا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, عہد کو پورا کرنا, اور تنگی کے موقعوں پر, مصیبتوں کے موقع پر, باہر سے آنے والی مصیبتیں, جسمانی مصیبتیں, اس موقع پر صبر کرنا, لڑائی اور جنگ کے موقع پر صبر کرنا, سچائی کے ساتھ رہنا, تقوی کے ساتھ رہنا, یہ نیکی کے کام ہیں. گزشتہ ایک آیت میں تفصیل سے اس کو بیان فرمایا, بڑی جامع آیت ہے. چونکہ اس آیت میں یہ مضمون بھی آیا حین البأس کا, کہ لڑائی کے موقع پر بھی جمنے والے لوگ سچے لوگ ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے, اس موقع سے نظام فوجداری کا کچھ حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اسلامی فوجداری کا نظام, عادلانہ نظام, عدالتی نظام بہت ہی زیادہ انصاف اور بہت ہی زیادہ معقول ہے, سمجھنے سے بہت زیادہ قریب ہے. اب اگرچہ کہ لوگوں نے اس کو الٹا سمجھ لیا ہے, زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ امیر غریب شریف النسب غریب النسب، اعلیٰ نسب والا غیر اعلیٰ نسب والا، اس کا بڑا عرب کے اندر رواج تھا. چنانچہ اگر کوئی آدمی امیر زادے کو قتل کر دیتا تو غریب زادے کے دو افراد کو مار دیتے تھے، ایک کے بجائے دو کو. اگر وہاں کی شریف النسل آدمی کی کوئی آزاد غلام کو مار دیتا تو جو پسماندہ طبقے کے لوگ رہتے تھے ان کے آزاد کو مارتے تھے جا کے، اور اگر ان کی عورت کو مارا جاتا تو ان کے مرد کو مارتے تھے. تو اس طریقے سے یہ اونچ نیچ کا فرق پایا جاتا تھا، مساوات نہیں ہے، عدل نہیں ہے، برابری نہیں ہے. خون کے قتل و قتال کے اندر قصاص نہیں برابر ہوتا تھا. قصاص کے معنی آتے ہیں برابری اور مساوات کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم پر قصاص مقتولین کے سلسلے میں فرض کیا گیا ہے. جو لوگ قتل ہوتے ہیں ان کے بارے میں قتال قصاص فرض ہے، برابری فرض ہے. اب قصاص کیا کہتے ہیں؟ قصاص کے معنی تو آتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کا جان بوجھ کر قتل کیے جانے والے آلے سے قتل کیا ہو تو اس سے برابری میں اس کی جان لی جائے گی. جس نے کسی کی جان لی، اور ایسی چیز سے جان لی جس سے جان لی جاتی ہے، اور جان بوجھ کر کے کیا، وہ آدمی چلا گیا تو اس کی بھی جان لی جائے گی، اسی کو قصاص کہتے ہیں. اس کو قتل عمد بھی کہتے ہیں. ایک تو قصاص لیا جانا برابری کے معاملے، اور جو ایسا کرے گا وہ قتل عمد کرے گا. قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا. کسی آدمی نے جان، جیسے مثال کے طور پر گن سے مار رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو ختم ہوتا ہی ہے انسان، تو یہ قتل عمد ہے. لاٹھی کے ڈنڈے سے سر پہ زور سے مار دیا تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی مرے، مار بھی سکتا ہے، سر پھوٹ کے جو ہے ریکور بھی ہو جا سکتا ہے. تو ریکور ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو شبہ عمد بولتے ہیں، قتل شبہ عمد. اگر کوئی آدمی لاٹھی سے مارا دوسرا آدمی مر گیا تو اس کو قتل شبہ عمد بولتے ہیں. شکار کے لیے، ہرن کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور نشانہ تاکا ہوا بیٹھا تھا، سمجھا کہ ہرن ہے، جیسے ہی گولی چلایا قریب جا کے دیکھا تو انسان نکلا. قتل خطا ہے. یہ احکام الگ الگ ہے شریعت میں. جو جان بوجھ کر قتل کرے گا، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، مارا بھی اسی چیز سے جب مارتے ہیں، اور ارادہ بھی کیا مارنے کا، جو کہ گناہ کبیرہ ہے ناحق قتل کرنا، اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اسلام میں قصاص ہے، اس کے بدلے میں جان کے بدلے جان لی جائے گی. اور اگر لاٹھی واٹھی سے مارا سامنے والا مر گیا، یا مکہ مارا کسی وجہ سے مر گیا وہ، یا کسی اور طریقے سے مارا مر گیا جس سے عام طور پر مرتے نہیں ہیں، تو اس میں دیت ہے، خون بہا ہے، پیسے دیے جائیں گے، زمان اور تاوان ادا کیا جائے گا. قتل خطا کے اندر بھی دیت ہے، تاوان ادا کیا جائے گا، پیسے ادا کیے جائیں گے، اس میں جان نہیں لی جائے گی. شبہ عمد کے اندر جان نہیں ہے، قتل خطا کے اندر جان نہیں ہے، جان صرف جان بوجھ کر کرنے میں ہے، اور جس چیز سے قتل عموماً ہوتا ہے اس سے کرنے میں ہے. اور اس کا تعلق بھی عام انسانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے. ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بھائی ہمارے خاندان کے آدمی مار رہے ہیں، ہم بھی مار دیں گے تمہارے خاندان، ایسا نہیں ہے. جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں جا کر مقدمہ دائر کریں گے عدالت کے اندر کہ ہمارے اس آدمی پر یہ قتل ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس آدمی کا برابری میں بدلہ لیا جائے، ایسا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر کے بولے کہ بھائی میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ. جہاں کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہاں مظلومین کو یہ حق ہے کہ اسلامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، پھر اپنا قصاص کا مطالبہ کریں. تو اسلام میں ایک تو یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ مقتولین کے سلسلے میں برابری، مساوات، قصاص فرض ہے تمہارے اوپر. دوسرا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لنگڑا ہو، اپاہج ہو، مریض ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. جان کے بدلے جان، الحر بالحری، آزاد ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ شریف النسل عورت ہے اس کے بجائے دوسرے آدمی کے مرد کو قتل کیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، اس کے بجائے کسی اور آدمی کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. جو قصاص میں برابر جس کی جان لینی ہے اسی کی لی جائے گی، نہ اس سے اعلیٰ درجے کے آدمی کو دیکھا جائے گا، نہ مرد کو دیکھا جائے گا، نہ عورت کو دیکھا جائے گا. جس نے کیا ہے اس کے اوپر ہو جائے گا. باپ نے کیا ہے تو بیٹے پر نہیں آئے گا، بیٹے نے کیا ہے تو باپ پر نہیں آئے گا، آزاد نے کیا ہے تو غلام پر نہیں آئے گا، غلام نے کیا ہے تو آزاد پر نہیں آئے گا. جس نے کیا ہے اس کے بدلے میں ویسا ہی ہوگا. एक तो ये जाब्ता बयान कर दिया गया, दूसरी बात ये बयान की जा रही है, फमन उफिया लहू मिन अखीही शयून, अगर जिसको उसके भाई की जानिब से कुछ माफी दे दी जाए, मकतूल के कत्ल होने वाला तो कत्ल हो गया, अब उसके वारिसी ने सबने डिसाइड किया है कि भाई चलो छोड़ो इसकी जान छोड़ो, नादानी में मार दिया, गलती से मार दिया, जुल्म करके मार दिया, गुनाह के अंदर शैतान चढ़ गया था, मार गया, चलो हम अपनी तरफ से माफ़ कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फत्तेबाउम बिल मारूफ, भले तरीके पर उसको का मुतालबा करना है, भले तरीके जो लोग माफ़ कर रहे हैं क़िसास को, उनको चाहिए कि जो आप दियत ले रहे हैं माफ़, खून माफ़ कर करके दियत ले रहे हैं, चलो भाई ठीक है खून माफ़ है, एक आदमी की जान का बदला जितने पैसों में होता है, हर ज़माने के एतबार से अलग अलग होता है, जगह के एतबार से, तो उसूली एतबार से एक आदमी की जान सौ ऊँट के बराबर है, सौ ऊँट में जितने पैसे लगते हैं एक आदमी के उतने दियत होती है, और इस ज़माने के एतबार से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो मसला ये है कि फत्तिबाउ बिल मारूफ, मुतालबा करना है तो दस्तूर के मुताबिक करो, सही तरीके से करो, जुल्म ज्यादती करके मत करो, भाई जान बख्श दे रहे लेकिन ये कि पैसे लेना है तो उसमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अदाउन इलैहि बेहसान, जिसने कत्ल किया उसको भी हुक्म दिया जा रहा है कि अच्छे तरीके से जो आपके ज़िम्मे दियत आ रही है वो अदा कर दो। अल्लाह ताला जो है मकतुलिन मकतूल के वारिसिन को भी सबक सिखा रहे हैं कि तुम भी भलाई का काम करो, और कातिल जिससे ज्यादती हो गई उसको भी बता रहे हैं कि तुमको अब खून बख्शा जा रहा है एहसान कर दो, अच्छे तरीके से अदा कर दो। ज़ालिक तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की जानिब से और रहमत है, आसानी है, यानी कितने अच्छे अहकाम बयान किए जा रहे हैं, कैसी आसानियाँ दी जा रही हैं, कैसी मेहरबानी और सहूलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हैं। फ़मन तदा बाद ज़ालिका, जो भी इसके बाद में ज़्यादती करेगा, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी खुले तौर पर बयान कर दिया गया, आज़ाद को आज़ाद के बदले, ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले, मर्द को औरत को औरत के बदले वगैरह, फिर माफ़ी के उसूल भी आ गए, अदायगी का तरीका भी बयान कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाए इसके बाद भी इतनी आसानी देने के बाद भी अगर ज्यादती होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देने वाले हैं। एक और अहम मज़मून बयान किया जा रहा है, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन, ऐ लोगों तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर ज़िंदगी है, क़िसास लेने में हयात है, क़िसास में हयात, क़िसास का मतलब तो ये है कि जान के बदले जान ले ली जाए, तो जान के बदले तो जान ली जा रही है, वो ज़िंदगी कैसे है? ज़िंदगी इस एतबार से है कि एक से क़िसास लो 1,000 की जानें बचेंगी, 100 से क़िसास लो 1,00,000 की जानें बचेंगी, 1,000 से क़िसास लो तो 10,00,000 की जानें बचेंगी, तो ज़िंदगी 10,00,000 लोगों को मिल रही है, हज़ारों लोगों को मिल रही है। और देखा जाता है जहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज होता है और जहाँ वो इस तरीके पर अमल होता है, क़िसास अगर ले लिया गया किसी इस्लामी हुकूमत वाकई इस्लामी तरीके पर, तो वहाँ के रेशो और जहाँ नहीं होता है वहाँ के रेशो उठा के देख लो। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया और हमारे उस्ताद मोहतरम अपनी तफसीर में नकल करते हैं कि मेरे पास एक प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देना है इस्लामी क़िसास के निज़ाम के ऊपर कि ये इस्लामी निज़ाम क्यों है इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप ऐसा करो, गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड जिन इस्लामी मुल्कों के अंदर सज़ा नाफिज है वहाँ का, और जहाँ सज़ा नाफिज नहीं है वहाँ का, दोनों का रिकॉर्ड ला लो, वही जवाब हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने जवाब तला रिकॉर्ड निकाल के इंटरनेट के ज़रिए से ऑनलाइन सर्च किया तो सारा रिकॉर्ड उनके सामने आ गया कि इस साल जो है फ़लां मुल्क के अंदर इतने परसेंट लोगों से क़िसास लिया गया। क़िसास वहीं लिया जाता है जहाँ पर नाहक खून होता है, और जहाँ पर जहाँ रिकॉर्ड में ये बात आई कि भाई इस मुल्क के अंदर जहाँ इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं है वहाँ का रिकॉर्ड देखे तो हर 10 मिनट के अंदर एक कत्ल की लिस्ट आ गई, हर 10 मिनट के अंदर एक कत्ल रिकॉर्ड है, और वहाँ साल में जो है 5-6 का रेशो है, या ये कि बहुत से बहुत 10-12 का है, बहुत से बहुत 50 का है, तो एक दिन के अंदर 5-10 मिनट के अंदर या घंटे में के अंदर एक कत्ल का रिकॉर्ड जहाँ हो, और जहाँ पर साल में जो है पूरे साल के दिनों का हिसाब भी ना होता हो, उतने कत्ल भी ना होते हो, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इसी को कुरान में कहा जा रहा है, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन, क़िसास में हयात है, ज़िंदगी है, एक से बदला लेके देख लो फिर सब सुधर जाएंगे। एक तो डरेंगे कि भाई हमारी जान जाएगी, मारेंगे तो मारेंगे नहीं किसी को, दूसरे है कि 10 मरतबा सोचना भी पड़ेगा क़िसास लेने के अंदर, फिर फिर आगे जा कर के हमदर्दी भी पैदा हो जाती है, आगे जा कर बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़िसास रखो, इसके अंदर हयात समझ में आएगी। या उलिल अलबाब ए दानिशमंदो, अल्लाह ताला फरमा रहे अकल वालों तुम्हारे लिए सहूलत इसी में है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ बच जाओ। खुतिबा अलैकुम इदा हदर अहदकुम मौत, जानो माल का तहफ्फुज़। इस्लामी निज़ाम के अंदर जान भी बहुत अहम है, माल भी बहुत अहम है। माल की अहमियत के एतबार से इस्लाम में बहुत सारी जगहों पर जहाँ ये बयान किया गया है कि नाहक तरीके पर किसी का माल ना लिया जाए, वहाँ पर माल खर्च करने के उसूल भी बताए हैं। जैसे सूरह इसरा के अंदर भी आया है कि ना इस तरीके से खर्च करो कि खुद खाली हाथ हो जाओ, ना ऐसे बांध कर रखो कि दोनों हाथ जो है कम गर्दन को बांध के रख लो, ना दे रहे हैं ना इस तरीके से अपने पास बांट रहे हैं तो ऐसा बांट रहे हैं कि कुछ बच नहीं रहा है, और जब नहीं देने पा रहे हैं तो माल का हक ही अदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्लामी निज़ाम में जान के जहाँ पर हकूक़ बयान किए गए हैं, माल का हक भी बयान किया गया है। माल के हकूक़ में से एक हक है वसीयत करना, माल के हकूक़ में से एक हक है वसीयत करना। हुजूर ने फरमाया है कि वसीयत की भी किस्में अलग अलग हैं। वसीयत बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ और वाजिब हो जाती है, वसीयत बाज़ दफ़ा मुस्तहब होती है, बाज़ दफ़ा जायज़ होती है, बाज़ दफ़ा नाजायज़ भी होती है वसीयत। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी की अमानत रखी हुई है, 1 लाख रुपए कोई आपके पास अमानत लगा रखा करके चले गए, अगर आपने अपने वारिसिन को नहीं बताया किसके हैं तो वो क्या समझेंगे, बाप के हैं, सब मिलके बांट के खा लेंगे। इसी तरीके से किसी का कर्जा लिया हुआ था तो कर्ज अदा करना बाकी है, उसको अगर नहीं बताएगा, वसीयत नहीं करेगा, तो इसका कर्जा जिम्मे से यहाँ से दुनिया से जाएगा तो आखिरत में वो कर्जा देना ही रह जाएगा, वारिसिन को तो पता नहीं चलेगा, तो वो कर्जा इसके जिम्मे ही रह जाएगा। इसी तरीके से फ़दिया देने के बहुत सारे मसाइल हैं, कई रोज़े रह गए थे उनका फ़दिया देना बाकी है, कई चीज़ें रह गई थी फ़दिया देना बाकी है, तो उसके ज़िम्मे भी उसकी वसीयत करना भी वाजिब है। तो कर्ज का मसला है, अमानतों का मसला है, फिदियों का मसला है, ये वसीयत वाजिब होती है। इसकी वसीयत ज़रूरी तौर पर अपने वारिसिन को बताना ये ज़रूरी होता है कि वो इतना माल है मुझे देना है, या अमानतें हैं उन्हें देना है, या कर्ज है या अदा करना है, ये फिदिया है इतनी रकम होती है, इतने मेरे रोज़े छूटे हैं, इतनी चीज़ें मेरे ज़िम्मे लाजिम हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है। बाज़ ऐसा होता है कि आदमी सोचा हुआ होता है कि भाई माल तो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, लेकिन ये कि मेरा अभी ये दिल चाह रहा है कि इतना माल जो है मैं मस्जिद में लगा दूँ, मदरसे में लगा दूँ, या फलां काम में दे दूँ, फलां गरीब को दे दूँ। हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी के पास भी वसीयत करने की कोई चीज़ रखी हुई है तो 2 रातें भी उसकी गुजरनी नहीं चाहिए, उससे पहले पहले फ़ौरन वसीयत लिख के तकिए के नीचे रख लेना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हुजूर ने मुझे फरमाया और मैं 2 रातें गुजरने से पहले अपने वसीयत लिख के अपने तकिए के नीचे रख चुका हूँ। सहाबा के पास फ़ौरन अमल होता था। तो अगर किसी को वसीयत करने का मन है और उसके पास अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है, फौरन वसीयत कर देना चाहिए आदमी को। वसीयत नाजायज़ भी होती है, नाजायज़। अच्छा, वसीयत करने के अंदर जो जायज़ वसीयत है उसके अंदर भी 1/3 में वसीयत करना है, 1/3 माल के अंदर वसीयत करना है। जैसे तो आपके पास मिसाल के तौर पर 90 लाख रुपये हैं, 90 लाख रुपये में से वसीयत सिर्फ 30 लाख में होगी। 90,000 अगर है तो 30,000 में वसीयत करना है, बाकी 60,000 वो वारिसिन आपके मरने के बाद में बेटे हैं बेटियां हैं माँ हैं बाप हैं, जितने जिनको हक मिलता है वो लोग ले लेंगे। आप जो वसीयत कर सकते हैं, वसीयत का मतलब ये होता है कि इस माल में से मेरे मरने के बाद फलां आदमी को दे देना, मेरे मरने के बाद इस माल में से मस्जिद में इतना लगा देना, मेरे मरने के बाद मदरसे में इतना लगा देना, मेरे मरने के बाद ये चैरिटी में दे देना। तो ये जो मरने के बाद आदमी वसीयत करता है या मरने के बाद के लिए आदमी पैसा लगाता है उसको वसीयत कहते हैं, माल लगाता है उसको वसीयत कहते हैं। इस वसीयत के अंदर सिर्फ 30% 1/3 तक ही इजाज़त है, 30 नहीं 1/3 तक ही, 1/3 माल तक ही इजाज़त है। 2/3 माल के अंदर आदमी तसरुफ नहीं कर सकता, वो वारिसिन का ही हक है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा करे कि अपने पूरे माल को ही अपने वारिसिन के अंदर मरने से पहले बराबर बराबर तकसीम करके, जैसा कि यहाँ किया जाता है इनहेरिटेंस वगैरह बना दिया लोग, बना लेते हैं, कर लेते हैं पहले से ही, और उसके बाद में उसको रजिस्टर भी करा लेते हैं, तो करा लेना चाहिए जहाँ पर ये अमल है, लड़कों की जानिब से ज्यादती का अंदेशा है, या किसी की लड़की की जानिब से भी हो सकता है आजकल, लड़कों की जानिब से हो सकता है आजकल, नाहक जो है कोई एक बड़ा है वो दूसरों का माल ले ले सकता है, कोई छोटा है लेकिन गुंडा है तो वो दूसरों का माल ले ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आदमी दुनिया से गुजरने वाला हो या एक हक पसंद हो, उसको चाहिए कि पहले से ही लिख दे कि अभी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है और शरीय एतबार से मसला मालूम कर ले कि बाप को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, फलां को कितना मिलेगा मरने के बाद, उसके एतबार से बना ले, फतवा भी ले ले, फिर उसी को जो है डॉक्यूमेंट बना करके कानूनी तौर पर रजिस्टर करा के रख दे, वही चीज़ जो है उसकी विरासत में उस एतबार से तकसीम हो जाएगी। ये कर लेना चाहिए, ज़माने के एतबार से लड़ाई झगड़े से बेहतर ये है कि पहले से ही करके रख लिया जाए कि भाई इतनी इतनी प्रॉपर्टी है और उसका इतना हक बनता है कि वालिद को इतना, वालिदा को इतना, बेटे को इतना, बेटी को इतना, बीवी को इतना, इतना सबको मिलने वाला है ये मेरे माल हो, और अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसमें फिर बढ़ जाएगा शरीय एतबार से, लेकिन अभी जितना है उस एतबार से तो इतनी वसीयत है मेरी, ये करके जाए, या ये कि परसेंटेज के हिसाब से निकाल ले कि इतने परसेंट इनको, इतने परसेंट इनको, इतने परसेंट इनको, तो मरने के बाद जितने भी आपके पास में प्रॉपर्टी होगी वो तो परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये रजिस्टर करा लेना चाहिए, इस ज़माने के एतबार से बेहतरी है, उसी के अंदर आफियत है। बहुत सारे लोग इसमें कोताही करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है बेटों का कब्जा माल पे हो गया, बेटियों को ये कह करके दूर कर दिया जाता है कि भाई शादी करे तुम्हारी, हो गया तुम्हारा हिसाब किताब, भाई शादी कर देने से उनका हक अदा नहीं हो जाता है। शादी कर देना भी एक जिम्मेदारी थी, वो किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन जिम्मेदारी वो भाई भाइयों की जिम्मेदारी है, बाप ही की जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना होता है। ये नहीं बोल सकते आप शादी कर दिए ना लिहाजा चले जाओ, शादी भी करना आपकी जिम्मेदारी है, माल का विरासत देना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। भाई सब ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, अल्लाह ने उनको दिया है हक तो इसी सूरत में दिया जाना चाहिए। भाई इस्लाम में औरत को जो हकूक दिए हैं, इसी वजह से बाज़ उलमा कहते हैं कि गोरों को अगर पता चल जाए या गोरियों को पता चल जाए कि इस्लाम में औरत को बैठ के खाने का है तो फिर वो चूज़ क्या करेंगे, अंदाज़ा होना चाहिए। भाई जॉब नहीं करना है आपको, कौन कमा के देगा? मर्द आदमी। घर कौन देगा? मर्द आदमी। खर्चा कौन? मर्द आदमी। खिलाएगा कौन? मर्द आदमी। और वसीयत में से भी मिल रहा है, उसमें से भी मिल रहा है, बाप का भी मिल रहा है, बेटे का भी मिल रहा है, शौहर का भी मिल रहा है, सबका मिल रहा है, माल ही माल है। खर्च कहाँ करना है? कहीं भी नहीं करना है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है औरत के ऊपर, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से औरतों पर एहसान है बहुत बड़ा। ये दीगर चीज़ों में अल्लाह तबारक तआला ने अगर औरत किसी एतबार से कमज़ोर बनाया है तो इस एतबार से उसकी माली इआनत भी कर दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो ये कहना कि भाई विरासत का हिस्सा लड़कियों को नहीं दिया जाएगा ये जुल्म है, ज्यादती है, इससे बेहतर ये है कि आदमी पहले से ही वसीयत कर दे या बता दे, और जितनी आदमी की प्रॉपर्टी है किसी ना किसी के सामने डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, किसी के सामने उनका हाल अहवाल पता ही नहीं चलते हैं, जिसको मालूम होता है वही हल्के से जो है अपने नाम पर रजिस्टर करा ले के बाद में जो है कब्जा कर लेता है। क्या बोलते हैं, मेरे को दे दिए थे बाबा जिंदगी में, जैसा बोलने वाले भी बहुत है, मेरे को दे दिए थे जिंदगी में, बल्कि पता ही नहीं है किसी को दिए थे नहीं दिए थे, ये तुमने किया है, सारी चीजें अल्लाह तबारक तआला को ही मालूम है। तो इसलिए किसी का हक दबाए बगैर जिम्मेदारी ये होती है कि आदमी वसीयत अगर करता है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बना करके पूरी तैयारी से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दिन भी नहीं गुजरना चाहिए आपके तकिए के नीचे जो है वसीयत नामा लिखा हुआ होना चाहिए, ताकीद है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इब्तदाई इस्लाम में क्या था, इस आयत में मज़मून बयान किया जा रहा है। कुतिबा अलैकुम इदा हदर अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन लिल वसीयत लिल वालिदैन वल अक्रबीन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है जब तुम में से किसी पर मौत हाजिर हो, अगर वो माल छोड़ कर जाए वसीयत करना वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ मारूफ तरीक़े पर, हक्कन अलल मुत्तकीन मुत्तकियों पर ये हक है। इब्तदाई इस्लाम में ये फ़र्ज़ था वसीयत करना, वालिदैन के लिए वसीयत करो, करीबी रिश्तेदारियों के लिए वसीयत करो, वसीयत करना फ़र्ज़ था, मुत्तकियों पर फ़र्ज है। उलमा फरमाते हैं कि जब आयात मीरास नाजिल हुई तो फिर वसीयत को की फ़र्जियत ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ होना अब ख़त्म हो गया, कोई करता है तो वसीयत कर सकता है। दूसरा मसला ये है वारिस के लिए वसीयत नहीं है, वसीयत उन लोगों के लिए की जा सकती है जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, जिनका हिस्सा मुतय्यन है आपके माल में पहले से, उनको वसीयत नहीं कर सकते आप, जैसे बीवी के लिए वसीयत नहीं कर सकते, शौहर के लिए वसीयत नहीं कर सकते, बाप के लिए वसीयत नहीं हो सकती, बेटे के लिए नहीं हो सकती, वालदा के लिए नहीं हो सकती, बेटी के लिए नहीं हो सकती, किसके लिए कर सकते फिर? जिनका हिस्सा पहले से मुतय्यन नहीं है उनके लिए हो सकती, भाई के लिए, बहनों के लिए, यतीम पोतरे के लिए, यतीम नवासे के लिए, नवासियों के लिए, क्योंकि जिनको माल नहीं मिलता है, बेटे की मौजूदगी में पोतरे को नहीं मिलता, बेटे की मौजूदगी में पोतरे को नहीं मिलता, नवासे नवासियों को नहीं मिलता उनको दे सकते हैं, भाई बहनों को नहीं मिलता उनको दे, उनके लिए वसीयत हो सकती है, भाई गरीब है उसको दिया जा सकता है, वसीयत उसके लिए की जा सकती है। यतीम पोतरों की नवासों मीरास के लिए बहुत बड़े मसले होते हैं हमारे पास में, इस्लाम पर एतराज़ भी किया जाता है, ये पोतरा है, सब लोग जो है चचा वगैरह सब अच्छे स्टेबल हो गए हैं, जो भाई का इंतकाल हो गया उसकी औलाद पड़ी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं, वसीयत कर सकते हैं उसको, 1/3 माल तक उसके लिए वसीयत हो सकती है। तो वसीयत का ताल्लुक वारिसीन के लिए नहीं है, वारिस के अलावा को वसीयत करना है, एक मसला। दूसरा मसला, जो वारिस के अलावा को भी वसीयत करेंगे आप, आधे माल की नहीं, पूरे माल की नहीं, 1/3 में ही कर सकेंगे। तो चाहे किसी आदमी को वसीयत करें, 1/3 में करना है, अपने लिए मस्जिद बनाने के लिए वसीयत करें, मदरसा बनाने के लिए वसीयत करें, किसी और चीज़ की वसीयत करें, 1/3 माल के अंदर ही की जाएगी। इब्तदा इस्लाम में ये वसीयत फ़र्ज़ थी, फिर बाद में ये वसीयत क्या हो गई, मुस्तहब रह गई, हर चीज़ के लिए अलग अलग वसीयत रह गई अब, यानी नमाज रोज़ों के लिए, इसी तरीके से कर्ज की अदायगी के लिए, और इसी तरीके से फिदियों वगैरह के लिए, ये वसीयत वाजिब और फ़र्ज़ है। दूसरे मुस्तहब वसीयत ये है कि आदमी कुछ करना चाह रहा है अपनी तरफ से, 1/3 माल के अंदर वसीयत कर ले। ये कहना कि भाई मेरी जानिब से ये माल जो है फुला खुदा ना खास्ता नऊज़ु बिल्लाह ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ नाजायज़ काम होते हों, हराम काम होते हों, हराम बिजनेस हो, हराम कारोबार हो, हराम जगह हो, वहाँ वसीयत करना ये हराम है, नाजायज़ है। अपने माल को नाजायज़ जगह लगाना भी नाजायज़ वसीयत में शुमार होता है, ना वहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना वसीयत होनी चाहिए, ना उस काम में हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुम इदा हदर अहदकुम अल-मौत, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है जब तुम में से किसी को मौत आए, जबकि वो माल छोड़ करके जाए, वसीयत करना, ये फ़र्ज़ किया गया है। वालिदैन के लिए वसीयत और करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत दस्तूर के मुताबिक भले तरीके से होनी चाहिए। हक़न अलल मुत्तकीन, मुत्तकियों पर हक़ है। फ़मन बदलहू बादमा समिअहू फ़इन्नमा इस्मुहू अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो जो भी इसको बदल डाले सुनने के बाद, उसका गुनाह उन लोगों पर है जो इसको बदल देंगे। वसीयत करने वाले ने वसीयत की और उसके बाद में सुनने वाले गवाह बदल रहे हैं, तो गवाही में वसीयत के अल्फाज को बदल देना, तहरीफ कर देना, अल्फाज मिटा देना, ज़ीरो बढ़ा देना, ज़ीरो कम कर देना, ये सब जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं गुनाह है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला बातों को सुनते भी हैं, अहवाल को जानते भी हैं, हालात को जानते हैं, जो कुछ हो रहा है। फमन खाफ मिन मौसिन जनफन अव इथमन, जो कोई किसी की किसी वसीयत करने वाले की जानिब से अंदेशा करे जानिबदारी का, वसीयत करते वक्त में ये सोचकर वसीयत कर रहा है कि अच्छा मैं अगर वसीयत नहीं करूँगा इसको ज़्यादा माल मिलेगा, ये मुझे ज़िंदगी में बहुत तपाया है, इसको जो है माल कम करना है, उसके लिए अगर कोई वसीयत कर दे रहा है, और इस्मन या गुनाह की वसीयत कर रहा है, फ़असलह बैनहुम, तो जो कोई भी उनके दरमियान में इसलाह करा दे, फ़ला इस्म अलैह, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा इसलाह करा देना चाहिए, उसकी इसलाह कर देना चाहिए कि भाई जानिबदारी का मामला मत करो, गुनाह की वसीयत मत करो, माल नाजायज़ जगह पर मत लगाओ, ये भी अल्लाह तबारक ताला तरगीब दे रहे हैं। इन अल्लाह गफ़ूर रहीम, बिला शुबा अल्लाह तबारक ताला बहुत ही बख्शने वाले हैं, बेहद मेहरबान हैं। तो मुसी की जानिब से वसीयत करने वालों की तरफ से भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अपने पास भी होता है कि भाई कहते हैं कि आख कर दिए तुमको, बेटे को कह देते हैं कि तुम्हारी जानिब से बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तुमको घर से आख किया जा रहा है, घर से आज़ाद निकाला जा रहा है, वो भी मामले किए जाते हैं। या ये कि किसी को दबाने के लिए, माल दबाने के लिए इसको ना मिले, किसी और के लिए वसीयत, तो किसी का हक़ दबाने के लिए वसीयत नहीं होनी चाहिए। वसीयत अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए होनी चाहिए, गुनाह की वसीयत भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी जगह होता हुआ देखे इस तरह, तो उसलिए इस्लाह कर देना चाहिए, मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है, इसी की तरगीब इस आयत मुबारका में दे दी गई है। फ़मन खाफ़ मिन मौसिन ज़नफ़न अव इथ्मन फ़असलह बैनहुम फ़ला इथ्म अलैह इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले हैं, बेहद मेहरबान हैं। तो इन दो तीन आयतों के अंदर एक तो जान का हक़ भी बताया गया है, माल का हक़ भी, माल के हक़ का एक हिस्सा बताया गया है, माल के हक़ में वसीयत एक हिस्सा है, और इसी वजह से आप हजरात देखते होंगे कि जब मरने वाले ने मरने के बाद विरासत का हिस्सा जब पूछा जाता है दारुल इफ्ता वगैरह से, तो लिखते हैं एक जुमला, बाद अदाए हुकूक मुतकदमा अलल इर्स, विरासत की तकसीम से पहले जो हुकूक आते हैं उनको अदा करने के बाद विरासत होनी चाहिए। बाद अदाए हुकूक मुतकदमा अलल इर्स, फलां फलां वारिसिन को इतना हक दिया जाए, बल्कि एक जबान है इस फतवे की। तो बाद अदाए हुकूक मुतकदमा, हुकूक मुतकदमा के अंदर जो विरासत से पहले जो हुकूक आते हैं उनमें औरत का महर भी है, वो कर्ज होता है, उसकी वसीयत करना पड़ता है। अगर नहीं अदा किया है तो उसकी वसीयत करना है। कर्जे हैं, नहीं अदा किया है तो कर्जे अदा करना है। अमानतें हैं, नहीं अदा किया है तो अमानतें अदा करना है, उन उसकी वसीयत करना है। तो उन वसीयतों के बाद, या अगर किसी ने वसीयत की है तो उसके बाद में विरासत की तकसीम होती है। विरासत की तकसीम कर्ज की अदायगी के बाद, अमानतों की अदायगी के बाद, एक तिहाई माल से वसीयत की अदायगी के बाद, उसके बाद में शुरू करना है विरासत का अमल। पहले वालिद के कर्जे अदा किए जाएंगे, अमानतें अमानतों की जगह पहुंचाई जाएंगी, और उसके बाद में वसीयत की जगह वसीयत पूरी कर दी जाएगी। जब उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तकसीम विरासत का मसला आएगा। विरासत की तकसीम का मसला इस मरहले पर आता है। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को सही इल्म अमल नसीब फरमाए। वहाँ पर हमारे शरिया बोर्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज एक लड़की का कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है, और कुरान पाक मुकम्मल होने की शक्ल ये है कि वो सुबह 9 बजे से अभी तक पढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अभी मैसेज आया है कि मुकम्मल हो गया है। तो वहाँ दुआ में जाना है मुझे, इसलिए आज जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए हमें भी, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ताला देखने की चीज़ है, मतलब ये है कि हमारे लिए उससे सबक लेना है कि माशाल्लाह यहाँ इस जैसे मुल्क के अंदर लड़कियाँ भी सुना रही हैं। लड़के तो सुनाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों में इतनी इस्तेदाद आ रही है, सलाहियतें आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये, खैर की बात है कि एक बैठक के अंदर, बीच में वजू वगैरह के मौके, नमाजों के मौके तो होते हैं, लेकिन ये कि एक ही दिन के अंदर बैठ के सुना देना पूरा कुरान मजीद आसान बात नहीं है। तो बहुत ही सआदत की बात है। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए इदारे को, इदारे की जानिब से होने वाली कोशिशों को। अल्लाह तबारक ताला हम तमाम को सही इल्म अमल नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسالك يا الله الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائیے، جو کوتاہیاں اس سننے سنانے میں ہو رہی ہیں پروردگار سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس سلسلے کو باقی رکھیے، اے اللہ اس سلسلے کو باقی رکھیے، ہماری زندگیوں میں سے خیر کو نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ان دروس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ.